ओम शांति। एक जंगल में एक कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था, पर उसकी खुशी उस दिन गायब हो गई जिस दिन उसने एक हंस को देखा। देखा कि हंस कितना सफेद है और मैं काला काला। और वो उस हंस के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे सुखी तुम ही हो। हंस ने कहा, मैं भी यही सोचता था कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं, पर जिस दिन मैंने तोते को देखा मेरी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि मेरा तो एक ही रंग है। तोते के पास दो दो रंग थे, तो सबसे ज्यादा सुखी तो वो है। तो कौवा भागते भागते तोते के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप सबसे ज्यादा सुखी हो। तोते ने कहा कि हां, मैं भी यही सोचता था, पर जिस दिन मैंने मोर को देखा मेरी सारी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पास तो दो ही रंग है और मोर के पास कितने सारे रंग है। तो कौवा भागते भागते मोर के पास पहुंचा, पर मोर तो प्राणी संग्रहालय में था, जू में था, और वहां पे हजारों लोग उसको देखने के लिए थे। तो कौवा थोड़ा रुका और जब लोगों की भीड़ कम हो गई तो वो कौवा मोर के पास गया और पूछने लगा कि मैंने सुना है कि आप सबसे ज्यादा सुखी हो। उसने कहा, हाँ, यही मैं भी सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, पर मेरा जीवन देखो कैसा है, मुझे पिंजरे में रहना पड़ता है, और इतने समय पिंजरे में और इस प्राणी संग्रहालय में रहने के बाद मेरा एक अनुभव है और एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने देखा इस सारे प्राणी संग्रहालय में हर प्रकार का जानवर है, एक कौवा ही है जो इस प्राणी संग्रहालय में नहीं है, उसे कोई नहीं पकड़ता, और मुझे ऐसा लगता है कि कौवा जो है वो इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। तब कौवे को पता चलता है कि सबसे ज्यादा सुखी तो मैं ही हूं। हम हमेशा दूसरों को अपने से ज्यादा सुखी समझते हैं, ये मनुष्य का कंपैरेटिव नेचर है। गगन ये समझे चांद सुखी है, गगन सोचता है कि ये जो चंदा है मुझसे ज्यादा सुखी है, चंदा कहे सितारा, चंदा सोचता है कि ये जो सितारे हैं मुझसे ज्यादा सुखी है, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे, नदी की लहरें समझती है कब तक बहते रहो, इससे तो अच्छा है शांति से एक जगह रुको, ये किनारा ये साहिल जैसा है, वो साथी दुख में ही सुख है छिपा रे, भैया रे साथी रे, दूर के पर्वत दूर ही रह के लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, कलिया समझे चमन सुखी है, कलिया समझती है ये जो चमन ये जो चिमन है ये सुखी है गार्डन, बर्ड्स जो कलिया है सोचती है ये चमन सुखी है, और चमन क्या सोचता है, चमन कहे रे बाहर है, चमन सोचता है हमको एक ही जगह रुकना पड़ता है, ये बाहर है देखो फिजाएं कैसी घूम रही है हवाएं, ये हमसे ज्यादा सुखी है, वो साथी रे दुख में ही सुख है छिपा रे, भैया रे साथी रे हे रामा, रात अंधेरी सोचे मन में दिन में है उजियारा, रात अंधेरी क्या सोचती है कि दिन कितना अच्छा है, उजाला ही उजारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा, पर दिन की गर्मी क्या सोचती है अंधियारा रात का ज्यादा अच्छा है, वो साथी रे पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे, जो पतझड़ है वो क्या सोचता है सावन हो ऑटम वो ज्यादा सुखी है, और सावन क्या सोचता है धूप चाहिए, अंगारे ज्यादा सुखी है, वो साथी रे दुख में सुख है छिपा रे, निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, धन वालों को चैन नहीं ये कैसी जग की माया। आज की मुरली में है, टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड नहीं, हिंदी में कहावत है दूर के ढोल सुहावने, अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, उधर की जो घास है अच्छी है, घर की मुर्गी दार बराबर। बाइबल में जीसस क्राइस्ट एक जगह कहता है प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। जीसस क्राइस्ट का जहां जन्म हुआ वो लोग कहने लगे ये और मसीहा, ये और जग का उद्धारक, अरे इसको तो हमने जन्म देते देखा है, इसका बचपन हमारी आंखों के सामने गुजरा है और ये आज अचानक भगवान का पुत्र बन गया, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे, साथे दुख में ही सुख है छिपारे, साथे दुख में ही सुख है छिपारे।
भैया रे
साथी रे,
भैया रे
ओ साथी रे, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे, उसाते दुख में ही सुख है छिपारे, ओ साथे दुख में ही सुख है छिपारे,
भैया रे
साथी रे,
भैया रे
ओ साथी रे, रात अंधेरी
रामा,
रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा, ओ साथी है शीतल अंधियारा, रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा, ओ साथी है शीतल अंधियारा, पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे, ओ साथी दुख में ही सुख है छिपारे, ओ साथी।
एक भिखारी रास्ते से जा रहा था, भीख मांगते मांगते एक घर के सामने आया, वो घर एक किसान का था, और उस भिखारी ने देखा कि कितनी खुशी है घर में, पत्नी अपने पति से पूछ रही है आज का दिन कैसा रहा, आज आपने बहुत मेहनत की होगी, और फिर बच्चे हैं, और फिर पत्नी अपने बच्चों को और अपने पति को भोजन खिला रही है। ये दृश्य देखकर किसान की आंखों, भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा ना तो घर है, ना तो कोई ऐसी पूछने वाली पत्नी है, ना बच्चे, फूटी किस्मत, काला नसीब, ये भी कोई जीवन है, और वो चला जाता है। अंदर किसान भोजन करते करते सोच रहा है वो महाजन के घर जाना है ब्याज चुकता करने, और फिर पहुंचता है उस महाजन के घर तो वो जो महाजन है उसके थाट बाट देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि हमारा भी क्या जीवन है। और तब तक वहां एक फोन आता है और उनको पता चलता है 10-15 हजार रुपए का फायदा हुआ है कहीं। वो कहता है कहां हम पड़े हैं 100-200 में, इनका जीवन देखो हजारों में पल खेलते हैं ये लोग, हमसे ज्यादा सुखी तो ये महाजन है। वो किसान वहां से चला जाता है, महाजन को फोन आता है कि साहूकार ने बुलाया है, तो वो साहूकार के घर जाता है। साहूकार के घर दावत चल रही होती है और जब दावत चल रही होती है फोन आता है 5 लाख का घाटा हो गया। तो साहूकार कहते हैं 5 लाख ठीक है कोई बात नहीं, ये सोचता है लो हम यहां बैठे 100-200 और हजारों में खेल रहे, इनको 5 लाख का घाटा हो गया तो भी कोई दुख नहीं, ये हमसे ज्यादा सुखी है। साहूकार को न्योता आता है कहीं और का, राय बहादुर वो जो लाट साहब है उनके यहां का, वो वहां जाता है देखता है वहां के थाट बाट, हजारों फोन आ रहे हैं, यहां इतने करोड़ का फायदा हुआ वहां इतने लाख का नुकसान हो गया, पर कुछ नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। वो कहता है हम तो बस गरीब के गरीब ही रहे, लाखों में ही खेल रहे अब तक, ये है जीवन, करोड़ों की चर्चाएं चल रही हैं यहां पर। बहुत दुखी होके जाता है और जो लाट साहब होता है उसको एक ऐसा फोन आ जाता है बीच में कि बहुत सारे करोड़ों का एक साथ नुकसान हो गया है। एकदम खाना खाते खाते उदास हो जाता है, खिड़की के पास जाता है और देखते रहता है जीवन कितना दुखी है, और देखता है एक भिखारी जा रहा है कहता है ये है जीवन ये है जीवन, कोई चिंता नहीं है इसको, कहां नुकसान कहां फायदा कुछ नहीं, कैसा निश्चिंत हो के कहीं पर भी सो जाओ कुछ भी खा लो ये है सुखी। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, कंपैरिजन का स्वभाव है। पर दो प्रकार के कंपैरिजन, एक है पॉजिटिव कंपैरिजन, एक है नेगेटिव कंपैरिजन। पॉजिटिव कंपैरिजन अगर व्यक्ति करे तो उन्नति होगी, और नेगेटिव कंपैरिजन करे तो 3-4-5-6 चीजें हो जाएगी। पहले व्यक्ति कंपैरिजन करना चालू करता है, फिर कंपैरिजन करते करते सेकंड स्टेप आती है बैड फीलिंग, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उसको, इसका हमसे इतना अच्छा है, हमारा ही ऐसा क्यों है पता नहीं, बहुत बुरा लगता है। और धीरे धीरे थर्ड स्टेप सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सम्मान जो है, सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खत्म होने लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों, ये सब इतने अच्छे हैं सब खाते पीते। हाँ उसके बाद फिर भावना होती है, धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, रिवेंज, बदला लूँ अब उससे जो मेरे से आगे जा रहा है, हम यहां इतने समय से हैं और ये अभी अभी आके आगे जा रहा है हमसे, बदला तो कुछ लेना पड़ेगा। और फिर विघ्न डालने का प्रयत्न करता है उसके मार्ग में, जो दूसरा व्यक्ति है जिससे ईर्ष्या हो रही है, जो हमसे आगे जा रहा है उसके मार्ग में क्या करो, विघ्न डालो। तो ऐसा चक्र चालू हो जाता है कंपैरिजन से, फिर उदासी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और जब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो अगर जूनियर है तो उसके मार्ग में बहुत कुछ किया जा सकता है, पर वो सीनियर है फिर तो बस सहन करना है, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जड़े मजबूत है उधर। तो ऐसा एक चक्र है ये कंपैरिजन का, व्यक्ति कंपेयर करता है, हर चीज में कंपेयर करता है अपने आप को। कंपेयर करना अच्छी बात है, परंतु वो पॉजिटिव बिहेवियरल कंपैरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंपैरेटिव बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। कंपैरेटिव बिहेवियर अगर निगेटिव रहा तो तो जीवन धीरे धीरे दुखमय हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्राह्मणों को भी आदत है किसकी, कंपैरिजन की। तो किन चीजों में हम कंपेयर अपने आप को करते हैं और कैसे उस कंपैरिजन से मुक्त हो, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, और ये कंपैरिजन की जो बातें हैं ये ऐसी बातें हैं शायद हमको भी नहीं पता कि हम कंपेयर करते रहते, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, हर चीज में कंपेयर करते, इतनी माइन्यूट और इतनी बारीक चीजें हैं वो कि शायद जब हम सुनेंगे या उसको लिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हम कंपेयर करते थे, हमारा बिहेवियर कंपैरिजन का है, इसलिए हम दुखी है। जैसे एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा घर था, लेखक ने लिखा उस अपने मित्र के बारे में कि मैं जब भी उसके घर जाता था वो एक चीज जरूर करता था, सारा घर दिखाता था, ये ड्राइंग रूम, ये स्विमिंग पूल, ये जिम, सब कुछ घर में ही है, इतना विशाल, इतना बड़ा घर, एक एक चीज दिखाता था, जबकि उसे सब पता था फिर भी दिखाता था। और वो दोस्त था तो मना भी नहीं कर सकते, ठीक है दिखाओ, ये गार्डन है, ये लॉन है, सब कुछ था। एक बार जब ये मित्र उस मित्र के घर गया तो उस मित्र ने कुछ भी नहीं दिखाया, एकदम उदास बैठा था। इसने पूछा क्या हुआ, आज दिखाना नहीं है? बोले क्या दिखाना है, ये झोपड़ी सामने घर है देखो, इससे ये तो 1 करोड़ का है, वो 2 करोड़ का है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, झोपड़ी को दिखा के क्या करूं मैं तुमको, तो ये झोपड़ी बन गई। तो हम कहां कहां कंपेयर करते हैं, कम से कम 60 पॉइंट्स है ये, बाकी आप निकालना। सबसे पहला ए से जेड तक आवाज, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। इसकी जबान से अमृत टपकता है और हमारी जबान से जहर, क्या करे, जबान ही ऐसी है, आवाज ही ऐसी है, बोलते हैं तो लोगों को लगता है हम डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव लेंगे तो दुखी होंगे। सिंगर्स में ये होता है, अचीवमेंट्स, उसको उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया कम समय में, हम इतने साल से बैठे हमने कुछ नहीं पाया, इसको ज्यादा कुछ मिला है, बाबा ने इसको थोड़ा ज्यादा दिया है, हमको कम दिया है, कंपैरिजन। फिर बॉस, इसका बॉस बहुत अच्छा है, इसका इंचार्ज, हमारा पता नहीं क्यों खड़ूस मिल गया हमको, ऐसा ही बॉस मिलना था हमको, कितना अच्छा बॉस है, इतना पालना करता है, और हमारा बॉस ऐसा क्यों है, छुट्टी के लिए जाओ तो तुरंत छुट्टी दे देता है, हमारे 10 प्रश्न पूछता है, कहां जा रहे हो, कब आओगे, नहीं आए तो जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं से कर लो जो करना है बात, कुछ फायदा नहीं हो, मेरा अनुभव है यहीं रहो मधुबन में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लौकिक में यहीं रहो, या ऑफिस में बॉस के पास जाओ। तो हमारा ही बॉस पता नहीं ऐसा क्यों है, ये दूसरों के सभी के बॉस बहुत अच्छे हैं, खुद भी ज्ञानी है, ज्ञान योग की पालना करते हैं, हमको तो ज्ञान योग के बारे में तो कुछ नहीं, खाली सेवा करो, यहां ज्ञान योग करने आए थे कि सेवा करने आए थे, फिर बॉडी ये ज्यादा सुंदर है, हमारी पता नहीं नाक ही ऐसी क्यों बना दी भगवान ने, दिखने में इतने काले हम क्यों है, भाषण देने जाते तो हमारा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता है काले होने की वजह से, ये ज्यादा ही गोरे है, शरीर के वजह से भी कई लोग दुखी है कि हम कम सुंदर है ये ज्यादा सुंदर है, हम कम हैंडसम है ये ज्यादा हैंडसम है, कंपैरिजन है, शरीर का भी कंपैरिजन है। और कहा जैसे कि मनुष्य का स्वभाव ही है कंपेयर करता है, हर चीज में तुलना करता है दूसरों से, इसका इसकी ट्रीटमेंट भी है बहुत बड़ी, ये पूरा कंपैरेटिव, नेगेटिव कंपैरेटिव बिहेवियर है, इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट है हम देखेंगे, पर साथ साथ बीच बीच में भी पॉइंट सुना रहे कि हम ये क्यों भूल रहे हैं कि इस ड्रामा में हर एक्टर यूनिक है। केवल यूनिक नहीं है, मास्टरपीस है, अपने आप में एक अद्वितीय कलाकृति है। एक एक आत्मा एक एक मास्टरपीस है। केवल यूनिक नहीं, केवल जीनियस नहीं, हम ही पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम में ही क्यों है। ये सब तो ठीक है, इतने अच्छे, ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा इररिप्लेसेबल है, हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक आत्मा अपने आप में अद्भुत है, श्रेष्ठ है, महान है, भगवान की चुनी हुई है। इसके लिए यहां कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जो वो सेवा कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं जो कर रहा हूं वो नहीं कर सकता। कंपैरिजन क्यों? जो उसका शरीर है हमको दूसरा दिख रहा है, बहुत सुंदर है, पर हो सकता है उसको दुनिया भर की बीमारियां है, उसको शरीर दर्द होते रहता है, पेट में गड़बड़ होती रहती है, ऊपर से उसको थोड़ी दिखता है। तो शरीरों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और हर आत्मा को शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिला है। कोई बहुत सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। और वास्तविक सौंदर्य शरीर का तो है ही नहीं। वास्तविक सौंदर्य कौन सा है? आत्मा का सौंदर्य है। कोई बहुत दिखने में सुंदर है पर जबान से निरंतर आग जहर टपकता है तो क्या कहेंगे? 5 मिनट बात कहो तो दुखी होकर ही आगना पड़ता है वापस। ऐसे टॉन्ट्स, ऐसे कमेंट्स, ऐसे जख्मी कर देता है कि घायल हो जाती है आत्मा। तो क्या फायदा ऐसे शरीर का? उसके बाद में सेंटर, वो सेंटर हमारे सेंटर से ज्यादा अच्छा है। ये सेंटर हमारा पता नहीं क्यों ऐसा है। ब्राह्मणों में ये सेंटर से वो दूसरा जो सेंटर है ना वो ज्यादा अच्छा है, वहां ज्यादा अच्छा पालना है, यहां की पालना थोड़ी कम है। और उधर जाने नहीं देते हमारी दीदी, कंपेयर करते हैं। हर व्यक्ति उसी स्थान पर है जहां उसका भाग्य उसे ले आया है, और हमारा हिसाब किताब उन्हीं आत्माओं के साथ है। इसके लिए हम उनसे अलग नहीं हो सकते, उन्हीं के साथ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसके लिए जो दूसरे जो है ये मत समझो ये सेंटर वाले ज्यादा सुखी और हम कम सुखी है। वहां जाओगे तो कुछ और पता चलेगा, दूर के ढोल सुहावने। उसके बाद में बच्चे, ये दूसरों के बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं, होशियार है, पढ़ाई में अच्छे हैं, हमारे पता नहीं क्यों ऐसे निकले, क्या पाप किए थे हमने जो ऐसे बच्चे आ गए। माँ बाप को ही गालियां देते, पढ़ाई नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं है। पड़ोस का चिंटू देखो, एक बार बोल दो तो तुरंत काम करता है, और हमारा देखो ये बिल्कुल अपने पिता पर गया है। फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट्स, इनकी बहुत जान पहचान है, इतने कॉन्टैक्ट्स है, हमारे बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है। एक काम करना हो तो पता नहीं कहां जाओ, समझ में नहीं आता है, और इनको तो एक फोन लगा दो और सारे काम हो जाते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत है, पर जिनके कॉन्टैक्ट ज्यादा है उनके दुख भी ज्यादा है। उनके पूछो उनके दुख कितने दुख है उनके। अच्छा है तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स कम है। उसके बाद में देश, ये अमेरिका में रहने वाले कहां गए चिमन भाई? अमेरिका में ज्यादा सुखी है लोग, उधर ही जाके रह जाओ तो अच्छा है। भारत में ना तो कितनी गंदगी, सफाई नहीं, विदेश में थोड़ा ज्यादा अच्छा है। दूर की ढोल सुहावने, वहां जाओ तो फिर पता चलता है क्या है। तब याद आती है भारत की, कि भारत ही ठीक था, जो है जैसा है, मेरा ही भारत है, मेरा भारत ही महान है। वहां सब कुछ है, सब कुछ है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, प्यार छोड़कर। जो भारत में है वहां ऐसा कोई सब्जी वाला नहीं आता है जो बाहर से चिल्लाता है कि ये ले लो वो ले लो, कोई ऐसा दूध वाला नहीं है वहां सब ऑटोमेटिक है, वहां सब है, पर यहां जो है वो वहां नहीं है। और वहां के सोचते हैं ये भारत बहुत अच्छा है, भारत में आ जाओ। यहां वाले सोचते हैं विदेश अच्छा है, उधर वाले सोचते हैं ये अच्छा है, कंपैरिजन। उसके बाद में डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट पता नहीं क्या है इसका, ये इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम सेवा है। हमारे डिपार्टमेंट की सेवा ही तब बुलाते जब अमृत वेला हो, जब क्लास का टाइम हो। सब ये इंचार्ज के मन के ऊपर रहता है, चेंज होते रहता है माइंड, दिमाग। हमसे अच्छा डिपार्टमेंट उनका है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए, ऐसा क्या करूं कि यहां से निकल के उस डिपार्टमेंट में चला जाऊं। डिपार्टमेंट, उसके बाद में दीदी, ये दीदी हमसे, हमारी दीदी से ज्यादा अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, बातें भी बहुत अच्छी से करती है, पूछती भी है, पालना बहुत अच्छी है, रात में लेट हो गया भोजन के लिए भी पूछती है, ये ज्यादा अच्छी है। इनसे ज्यादा कांटेक्ट रखना चाहिए, इनसे थोड़ा कम, कंपैरिजन। उसके बाद में एजुकेशन, ये ज्यादा पढ़े लिखे, हम कम पढ़े लिखे ना, इसलिए हमको इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है। हम अगर पढ़े लिखे होते ना तो बहुत अच्छा होता, अच्छा है पढ़े लिखे नहीं हो। वो एक व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो जब एकदम जवान रहता है, एक नौकरी के लिए जाता है और उसे पूछता है, फॉर्म भरता है और फिर वो कहते हैं अपना ईमेल आईडी लिखो, तो वो कहता मेरा ईमेल तो है ही नहीं, तो बोलते तुम्हारा ईमेल नहीं है, अरे रे तुम्हारा ईमेल नहीं है तुम कैसे करोगे ये जॉब, इसमें तो सारा ईमेल से होता है। बोलते मुझे तो कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता है, बोलते जाओ यहां से, उसको भगा देते। और फिर जाके वो छोटी मोटी नौकरी करता है, घर घर में कुछ कुछ बेचता है, फिर उसको और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तब भी उसका मेल नहीं रहता है। वो हमेशा कहता है कि अच्छा हो गया, अगर मेरा मेल होता ना तो तुम क्या होते, उस दुकान में नौकरी करता होता आज, उस कंपनी में कहीं ना कहीं, अभी तो हजारों करोड़ों का मालिक हूं। कंपैरिजन नहीं करना है एजुकेशन, क्योंकि रियल एजुकेशन जो है वो तो भगवान दे रहा है। ये जो ज्ञान है यही सबसे बड़ा एजुकेशन है, सबसे बड़ी तरबियत, सबसे बड़ी ट्रेनिंग, सबसे बड़ा एजुकेशन, शिक्षण, ये शिक्षा है। इसी से अपने आप को ऊंचा करना है। उस एजुकेशन से तो अहंकार भी आ सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तुम कम पढ़े लिखे हो। उसके बाद में एंजॉयमेंट, इनका जीवन तो बस मौजों में बीतता है, ऐश करते हैं ये लोग। हम इधर पड़े हुए दिन रात काम करते और नाम भी नहीं होता है, ये लोग करते तो कुछ नहीं, नाम सबसे ज्यादा होता है। कंपेयर, एंजॉयमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। संगम युग एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, सांसारिक एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, रूहानी एंजॉयमेंट के लिए। और रूहानी एंजॉयमेंट सबसे बड़ी एंजॉयमेंट है तपस्या, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से भरना, इससे बड़ी कोई एंजॉयमेंट नहीं है संसार में। उसके बाद में फ्रेंड्स, इनके दोस्त बहुत है, हमारे दोस्त ही नहीं है, फ्रेंड सर्कल ही इतना छोटा है। इनके दोस्त देखो एक दूसरे पर मर मिटते हैं, ईर्ष्या होती है ऐसे दोस्तों को देखकर। हमारे, हमारा दोस्त कौन है? भगवान है। चाहे संसार में कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, पर दो तीन चीजें अगर हो गई तो क्या कर सकता है? वो बीमार पड़ गया तो क्या करोगे? दोस्त बहुत ही अच्छा है, मर मिटने को तैयार है, पर वो बीमारी पड़ गया या मर गया। हमारा ये दोस्त ना तो मरता है और ना बीमार पड़ता है। आज बोला है मारने के लिए खास आए हो तुम यहां, तुम्हारी तैयारी है खास मरने के लिए, उसके लिए तुम यहां आए हो। नहीं आज है, आज भी, कल भी था, आज अलग तरीके से, खास मरने की तैयारी के लिए आए हो ऐसा। आज थोड़ा भारी है। तो एक एक संबंध बाबा के सामने रखना और उसको कंपेयर करना, ये जैसे कोई पति पत्नी एक बहुत प्यार है, बहुत प्यार है दोनों में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्यार है, सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे रिप्लेस करें अब उसको? पर शिव बाबा वो है, वो ना तो कभी बीमार पड़ता ना तो कभी मरेगा। वो कहीं बाहर चला गया तो क्या करोगे? फोन ऑफ। इसका तो कहीं बाहर जाता नहीं और फोन निरंतर ऑन रहता है, खाली पुकारने की देरी है बस, वन कॉल अवे। उसके बाद में फैसिलिटीज, इनको साधन बहुत सारे मिले हुए हैं, हमको पता नहीं साधन की वैसे कम मिले हुए हैं। इनका कमरा भी अच्छा है, इनको पूछा ज्यादा जाता है, सब कुछ अच्छा है इनका, हमारा कम है, साधन हमारे पास कम मिले। कंपेयर कर रहे साधनों के लिए, दो दो आत्माएं। उसके बाद में भोजन, इनके तो बस ऐश है, खाना पीना क्या बढ़िया मिलता है इनको, खाओ पियो मौज करो। हम देखो सूखी रोटी दाल वही खा रहे कितने साल से। ये मधुबन निवासी ज्यादा ही सुखी है, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, बढ़िया बढ़िया। हमारे घर में तो ये सब कुछ नहीं रहता है, ये ज्यादा सुखी है हमसे, तो तुम भी आ जाओ। मनोरिंद्र दादी को आबू निवासी ये माउंट आबू वाले बोलते थे, दादी आपके ज्ञान सरोवर में तो सारे कुमार लोग ऐश करते रहते, खाना पीना मौज करो, इतना बढ़िया बढ़िया बनता है। दादी कहती तुम भी आओ, रहो रह के दिखाओ, रह के दिखाओ, ब्रह्मचर्य इधर करो पालन, फिर पता चलेगी क्या ऐश है। फिर उसके बाद में गैजेट्स, मोबाइल, हमारा एक 10 साल से एक ही मोबाइल चल रहा है, इनके देखो तो 6-6 महीने में बदलते हैं। ये भी कोई जीवन है? सेम मोबाइल लेके घूम रहे, उसका कवर भी फट गया, इसका भी फट रहा है। इनका तो कवर तो क्या है, हमारा मोबाइल की जितनी कीमत है उसके कवर की उतनी कीमत है, इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सब कुछ है। कंपैरिजन, मोबाइल का कंपैरिजन, जब भी कोई मिलता है सबसे पहले उसका मोबाइल देखते, अच्छा ये वाला है, ओ, ये मॉडल है, ये तो एकदम आउटडेटेड है, इसके बिगड़ गया तो इसके कोई पार्ट्स भी नहीं मिलते। कैमरा बढ़िया वाला, इसमें तो कैमरा निकालो तो दिखता भी नहीं कुछ। उसके बाद में घर, वही घर है हमारा, इनका देखो कितना बढ़िया घर बना दिया हमसे, हाउस। उसके बाद में स्वास्थ्य, पता नहीं ये क्या है हमारे शरीर का, एक बीमारी निकलते ना दूसरी आती है, घुटने में दर्द ठीक नहीं होता तो कमर में दर्द, कुछ ना कुछ होते ही रहता है शरीर को। ये देखो आराम से इनका जो चाहे मर्जी खाते रहते, कभी बीमार नहीं पड़ते फिर, और हम कुछ खाते नहीं, इतनी परहेज करते फिर भी बीमारी बीमार पड़ते रहते। कंपैरिजन, हेल्थ का कंपैरिजन। उसके बाद में हॉलीडेज, इनको छुट्टियां देखो कितनी मिलती है, हमको तो मिलती नहीं, जब चाहो देखो कहाँ गए तो यहाँ गए वहां गए, घूमते रहते, हम वहीं बैठे हैं एक जगह इतने समय से, इतने सालों से। फिर हिसाब किताब, ये एक अलग कंपैरिजन है, इनके हिसाब किताब भी चुकतू होते तो बड़े अच्छे तरीके से होते, हमारे ही पता नहीं इतने कठोर क्यों हुए हिसाब किताब। उसके बाद में बुद्धि, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बाबा ने पता नहीं हमको ऐसी बुद्धि क्यों दी, मुरली पढ़ो तो याद भी नहीं रहता है, 4 बार पढ़ो तो भी याद नहीं रहता है। इंप्रेशन, इनका इंप्रेशन बहुत ज्यादा है सब पर, हम इतना इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश करते उल्टा ही होता है पर। इंपॉर्टेंस, इनका इंपॉर्टेंस बहुत है यज्ञ में, हमारा कम है, हमको कोई नहीं पूछता, इनको ज्यादा पूछते, कहीं जाओ तो बाहर खड़े रहते माला लेके, हम जाओ तो कोई पूछता भी नहीं, कहीं जाओ तो चुपचाप जाना पड़ता है, देखता भी नहीं हमारी तरफ कोई। उसके बाद में जॉब, जो जॉब मैं कर रहा हूं ये इतना ठीक नहीं है, दूसरों का जो जॉब है वो ठीक है, ये लौकिक वाले जो बाहर रहते हैं वो सोचते हैं इनका जॉब अच्छा है, इसका टाइमिंग भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, टेंशन भी कम है, हमारा ही टेंशन बहुत है, अच्छा नहीं है ये जॉब, क्या करें इसको, छोड़ दे क्या। फिर जस्टिस, हमारे साथ हमेशा ही अन्याय होते आया है, शुरू से आज की बात नहीं है ये, हमेशा ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। और लोगों ने हमको रुलाया है जब से ज्ञान में आए तब से, आंसू ही भाग में है। फिर ज्ञान, नॉलेज, इनका नॉलेज बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमारा इतना कम है, काम नहीं आता है कुछ। फिर उसके बाद में लिबर्टी, इनके पास फ्रीडम बहुत है, जहां मर्जी जाओ वहां जाओ, हमको तो बस बंद कमरे में रहना पड़ता है। अगर कहीं जाओ तो हजार कारण बताने पड़ते, एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। ये लोग जहां मर्जी जाए घूमते हैं, इतना फ्रीडम है जीवन में। उसके बाद में लौकिक, इनके लौकिक वाले बहुत अच्छे, हमारे पता नहीं क्या हिसाब है, जब से आए तब से विघ्न ही डालते रहते, विघ्न ही डालते रहते, विघ्न ही डालते रहते। लौकिक का भी कंपैरिजन करते हैं, इनके लौकिक अच्छे हैं, हमारे लौकिक, इनका पूरा परिवार देखो कैसा ज्ञान में चल रहा है, हमारे कब आएंगे पता नहीं। पति देखो कितना अच्छा है, पूरा परिवार ज्ञान में, कितना सुखी है। हम देखो अभी तक वही इनिशियल स्टेजेस में ही है। उसके बाद में लक, भाग्य, इनका भाग्य ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में लव, प्यार इनको बहुत मिलता है, और ये भी करते हैं दूसरों से, हमको तो कोई प्यार ही नहीं करता। उसके बाद में नेचर, इनकी नेचर बहुत अच्छी है। या और एक है मनन, इनका मनन बहुत अच्छा है, इनको नाम मान शान ज्यादा मिलता है, हमको नहीं मिलता है। फिर अपॉर्चुनिटीज, इनको अवसर बहुत मिलते हैं, हमको नहीं मिलते। उसके बाद में इनका ऑफिस बहुत अच्छा है, एसी है, हमारे ऑफिस में देखो वही है, ना तो एसी है इसमें ना तो कोई कबर्ड ढंग के है, इतने सालों से वही ऑफिस में काम कर रहे हैं, इतना छोटा सा, और ये देखो अभी अभी आया, इतना बड़ा ऑफिस, इतनी अच्छी चेयर, इतना अच्छा टेबल, एक कंप्यूटर वहां पे, हम कब से कंप्यूटर की मांग कर रहे हैं, अभी तक तो कोई नहीं मिला। कंपैरिजन। उसके बाद में स्थान, इस स्थान से वो स्थान ज्यादा अच्छा है, बाहर वाले सोचते मधुबन में आ जाए, ये ज्यादा अच्छा स्थान है, और मधुबन वाले सोचते हैं थोड़ा बाहर होके जरा घूम के देखते हैं क्या होता है, बहुत हो गया यहां पर। फिर माता पिता, पेरेंट्स, पता नहीं हमारे माँ बाप ने हमको ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी, कितने अच्छी वैल्यूज इनको सिखाई, हमारे माँ बाप ने तो ऐसा कभी नहीं हमको सिखाया। कोई कोई ऐसी आत्मा है जो सारा दोष अपने माँ बाप पर डाले हुए है, हमारे माँ बाप ने ही हमको ये सब सिखाया, ये नहीं सिखाया, सारा दोष उन्हीं का है। फिर उसके बाद में पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी कितनी पावरफुल है, और हम देखो मरियल दुखी उसके बाद में पावर, इनके पास सत्ता बहुत है, बहुत पावर है इनकी, एक फोन लगता है तो सारा हिल जाता है, हम तो फोन पे फोन लगाते कुछ हिलता नहीं है, हम हिल जाते हैं। उसके बाद में प्लानिंग, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, हम कितना भी प्लानिंग करते हर बार गड़बड़ी होता है प्लानिंग में। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, एक तो बताया एजुकेशन, एक के बाद डिग्रियां, इनकी डिग्रियां देखो कितनी है, हमारे नाम के सामने एक तो डिग्री लगे, नर्स सोचती है कि रे रे कब तक मैं फॉलो करती रहूं, डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है, डॉक्टर सोचता है नर्स इतनी झंझट है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन केस कर दे, क्या कर दे, वो सोचते इससे अच्छा तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले सोचते ये डॉक्टर ठीक है अपना पेशेंट देखे और गए, यहां तो 24 घंटे सोचते रहना पड़ता है। जाए तो जाए कहां। उसके बाद में रोल, पार्ट, इनका पार्ट ही बहुत अच्छा है, हीरो एक्टर का पार्ट है यज्ञ में, और हम यहां आए असिस्टेंट। फिर उसके बाद में सेवा, इनकी सेवाएं बहुत अच्छी है, हमको पता नहीं बाबा हम ऐसी सेवा क्यों नहीं देता है जैसे इनको देता है, हमको भी ऐसी सेवा करनी है, अच्छी वाली सेवा, कब तक हम एक किचन में भोजन बनाते रहे, हमको भी कुछ और दो जिसमें नाम मान शान हो। उसके बाद में भाषण, इनका भाषण बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है। उसके बाद में सक्सेस, इनको सफलताएं बहुत मिलती है, हम जो भी करते हमेशा मैं हरदम ही हारा। स्टैमिना, इनका स्टैमिना देखो कितना है, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। हम तो थोड़ा सा करते हैं तो बस आराम चाहिए 4 घंटा कंपैरिजन। उसके बाद में टाइमिंग्स, उसके बाद में टूर, फॉरेन टूर, इधर टूर उधर टूर, उसके बाद में गाड़ी व्हीकल। हमको इतने साल हो गए अभी तक पैदल ही घूम रहे, ये अभी अभी आया, गाड़ी भी है और साथ में एक ड्राइवर भी, और गाड़ी भी बढ़िया, या तो हमारे पास गाड़ी है पर इनके पास एसी वाली है, दुखी हाँ लेटेस्ट मॉडल वाली है। उसके बाद में यूनिटी, इनका संगठन देखो कितना अच्छा है, हमारा ऐसा संगठन क्यों नहीं हो पाता। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में कितनी अच्छी है, हमारे ग्रुप सर्कल में, हमारे सर्कल में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पाती मेरी और मेरे साथियों के साथ। इनकी देखो एक बिना कहे ही दूसरा समझ जाता है, यहां तो कह कह के गला फट गया परंतु सामने वाले को नहीं समझ में आया अब तक। इसकी पत्नी कितनी अच्छी है देखो, एक बार बोल दो समझ नहीं आते, और हमारी देखो उल्टी खोपड़ी जितना समझा उतना दिमाग खाती है क्या सोचा था डाउट ही डाउट करती है हर बात में, डाउट
छोड़ भी नहीं सकते,
साथ में ज्ञान में चल रहे क्या करे। उसके बाद में धन, इनके पास धन ज्यादा है हमारे पास कम है, वेल्थ, कितने धनवान है। उसके बाद में गिफ्ट्स, इसको इंग्लिश में जीनियम कहते हैं, इनको गिफ्ट्स कितने मिलते रहते हैं, सब कुछ गिफ्ट्स में मिलते रहते हैं, हमको तो कोई गिफ्ट ही नहीं देता, जब देखो तब कुछ ना कुछ गिफ्ट आते रहता है, ये कहां से मिला तो वो बहन ने दिया, वो कहां से मिला तो ये सेंटर से मिला, और हम ना तो टोली का कहीं से बॉक्स आता है ना कुछ आता है। राखी कितनी अच्छी, कहां से मिला, और हमको देखो एक धागा, इनको देखो गोल्डन वाली, बैज तो बहुत ही बढ़िया है। जैकेट कहां से मिला, वो बहन ने दिया, हमको तो कोई बहन देती नहीं कभी। फिर युगल, इनका पति बहुत अच्छा है, हमारा पता नहीं ऐसा क्यों मिल गया हमारा मुगल और कुछ कुछ पॉइंट्स हमने छोड़ दिए। लास्ट है जिंदगी, इनके जिंदगी, इनके जीवन, इनकी लाइफ ही बढ़िया है ओवरऑल। हमारा देखो क्या है, पता नहीं क्यों ऐसा हमारे साथ है, क्यों ऐसा होता है। सोच सोच के कितना बाबा को बोल बोल के भी रुक गए, थक गए। कर्म, फिर एक कर्म भी है, फिर उसके बाद में ब्लेसिंग्स, इनको वरदान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे वरदान मिले। डेकोरेशन, इनका देखो कितनी सजावट कितनी अच्छी होती है, हमारी कुछ भी सजावट नहीं है। गाइडेंस, इनको हमेशा अच्छा गाइडेंस मिलता रहा, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमको भी गाइडेंस चाहिए था पर जीवन में कभी गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए तो फंस गए यहां के। तब किसी ने गाइड किया होता तो कुछ और करते होते आज, गाइडेंस ही नहीं मिला ढंग का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अभी प्रश्न ये है, टाइम हो रहा है, प्रश्न ये है इस कंपैरिजन से मुक्त कैसे हो, इसकी क्या विधि है। जैसे कहा दो प्रकार के कंपैरिजन है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो क्या करें। सबसे पहला हाउ टू फ्री, ये अपने आप को कैसे फ्री करें। सबसे पहले स्टडी करो कि मेरे लाइफ में कंपैरिजन मैं कहां कहां करता हूं, हमको भाषण के लिए बुलाया है, हमने देखा हमको भाषण के लिए टाइम दिया 30 मिनट, दूसरों को टाइम दिया 1.5 घंटा, कंपैरिजन। जैसे कोई सिंगर है वो हमेशा चाहता है कि मेरा जो सिंगिंग का हो ना एकदम बीचों बीच होना चाहिए ताकि सब ऑडियंस आ जाए, हमारा रख दिया भाषण सबसे पहले, जब ये चार लोग अभी पहुंचे ही नहीं है लोग, या तो सबसे लास्ट में जब थक गए, और इनका देखो बीच में रखा है जिसमें पूरा ऑडियंस पूरा भरा पड़ा है। कंपैरिजन, उसमें भी कंपैरिजन, हर चीज में कंपैरिजन। तो सबसे पहले तो देखो कि कंपैरिजन कहां मैं करता हूं, और ये बहुत सूक्ष्म है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एक लिखो कहां कहां मैं कंपेयर करता हूं अपने आप के साथ दूसरों के साथ। इनकी स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं ये, तो कहा ना इसमें मैंने कुछ बातें कही, 60, आप उसको डबल बना सकते और तीन चार छोड़ दिए, इसमें लिखी है पर बोली नहीं तो दूसरा लिखो, कहां मैं कंपेयर करता हूं अपने आप को, क्योंकि लिखने से चीजें क्लियर होती है। उसके बाद में वो कंपैरिजन चालू कहां से हुआ जीवन में, वो कौन सा टाइम था जब ये कंपैरिजन नहीं था, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कंपैरिजन का। हो सकता है बचपन में ही चालू हुआ, बचपन में ही मां बाप कहते थे कि तुम्हारी बहन देखो हमेशा फर्स्ट आती है और तुम कुछ नहीं करते, वहीं से कंपैरिजन का बीज बोया गया। वो मम्मी हमेशा कहती थी वो देखो बाजू का पिंटू चिंटू तुमसे हमेशा आगे रहता है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम तो एकदम फालतू हो। तब से मां बाप की वजह से तब कंपैरिजन का सीड डाला गया। वो पहले तो कौन से क्षेत्र में कंपेयर करता हूं, कौन सी फील्ड है, और वो बीज कब डाला गया कंपैरिजन का, उसको देखो। उसके बाद में ये एक तीन स्टेप्स, उसके बाद में सेल्फ स्वमान, अपने आप की थोड़ी महिमा करो कि मैं बाबा ने मुझे कितना महान बनाया है, और अपनी प्राप्तियों को याद करो। बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, अपने खजानों को सामने रखो, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, मुझे मिली है ये चीज, उनकी अपनी आप की महिमा करना है और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना है बाबा को उन चीजों के लिए, रादर देन कंपैरिजन करते रहूं जो चीज मुझ में है नहीं। कोई है भाषण नहीं दे सकता, अरे भाषण नहीं दे सकते पर तुम्हें दूसरी चीजें कितनी अच्छी है तुम्हारे पास, उसको तो तुम भूल ही गए। मधुबन में रह रहे ये क्या कम भाग्य है, इस भगवान के ज्ञान में और इतनी अच्छी सेवा कर रही है क्या कम भाग्य है। अपनी सेवाओं को हम कम समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी। तो धन्यवाद, और वो धन्यवाद की पॉइंट्स भी लिखनी है, ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसको कहते हैं। जरूरी नहीं रोज लिखना है, हफ्ते में एक बार लिखो कि मेरे ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो मेरे साथ हुई है, हाँ ये इतनी बात ही हुई है, तो मैं क्यों कंपेयर करूं किसी के साथ, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा सेवा करता है, ये अच्छी सेवा करती है बहन, हम क्यों नहीं कर पाते। देयर इज नो नीड ऑफ कंपैरिजन, उसका अपना जीवन है, अपना पार्ट है, अपनी सेवा है। ये बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, हो सकता है उसने उतने लोगों को दुख दिया इसके लिए अभी उनको सुख दे रहा है हिसाब भी तो उतने बनाए उसने, फिर उसको तो करना ही पड़ेगा उनकी सेवा, हमने किए नहीं थी ऐसी, दुख किसी को ज्यादा दिए नहीं तो ठीक है। उसके बाद में दूसरों को अप्रिशिएट करना, किसी का कोई अच्छा दिखा, कोई अच्छी बात सुनी, एक है एनवी करना, जेलस करना कि ये ऐसा क्यों है मेरे साथ क्यों, उसको बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया, ये तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वर्च्यू है ये। किसी को अप्रिशिएट करना, किसी का गुणगान करना कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, भले हमने कभी नहीं किया था पर तुमने तो किया, क्योंकि होना तो चाहिए सेवा, चाहे मैं करूं या तुम करो, वो बाप की सेवा है बस, तुम्हारे मुख से ज्ञान निकले या मेरे मुख से, होना चाहिए सेवा, पर्पस तो सेवा है ना, तो कोई भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी बन जाए। तो दूसरों को अप्रिशिएट करो, उसके बाद में अपना टीचर खुद बनो, अपना कोच अपना टीचर खुद बनो, खुद ही खुद को सिखाओ, खुद ही खुद को समझाओ, या फिर अपने आप पर खुद दया करो, अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा देना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में ये है नहीं, इनका सब कुछ अच्छा है, हमारा सेंटर ही ऐसा है, हमारा वही ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, ये घर छोड़ के दूसरे इधर जाता हूं, यहां एक रावण है तो जहां जाओगे वहां 10 रावण बैठे हैं, ये भूलना नहीं, जहां हो वो बेस्ट प्लेस है, जिन लोगों के साथ हो बेस्ट लोग है, जो परिस्थितियों में बेस्ट परिस्थिति है वही परिस्थिति सबसे ज्यादा सिखाएगी, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, उसी में प्रतिकूल परिस्थिति में ही कमल खिलता है, आगे बढ़ना है, संपन्न बनना है, अनुकूल परिस्थिति में संपन्न थोड़ी बनना होता है, जहां सब विरोध कर रहे हैं उसमें ही महिमा है, वो रास्ता है हमारा, उसी में आगे बढ़ना है। तो अपने आप की महिमा करना, अपने आप के गुणगान गाना, अपने को क्या क्या मिला वो लिखना, और अपना टीचर खुद बनना, तो कंपैरिजन से मुक्त करेंगे। और फिर है ड्रामा की पॉइंट्स, हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है, और भगवान को हर एक्टर पसंद है, मैं क्यों कंपेयर करूं, मेरा कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता, कोई कितना भी कोई सेवा कर रहा हो पर मैं जो कर रहा हूं वो कभी नहीं कर पाएगा। और लास्ट एक बात, एक पत्थर तोड़ने वाला इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, सोचता है ये क्या जीवन है, देखता है एक साहूकार जा रहा है, सोचता है मैं ऐसा साहूकार बन जाऊं तो ये पत्थर तोड़ने से मुक्त हो जाऊं, फरिश्ता प्रकट होता है कहता है तथास्तु, वो जाके साहूकार बन जाता है, साहूकार बनकर जा रहा है पालकी में बैठ के, उधर से देखता है राजा हाथी पर बैठ के जा रहा है, अरे 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 ये भी कोई जीवन है, ये है जीवन, आगे पीछे सैनिक वो कहता है मैं राजा बन जाओ, राजा बनकर जाता है, राजा बन जाता है, तथास्तु, फरिश्ता फिर प्रकट होता है, तथास्तु, राजा बनकर हाथी पर बैठकर जा रहा है, पर सूरज की किरणें, धूप बिरछी मार रही है, कहते हैं धूप तो मेरे से ज्यादा है, सूरज मेरे से ज्यादा शक्तिशाली, मैं अगर सूरज ही बन जाऊं तो, फरिश्ता आता है तथास्तु, सूरज बन जाता है, बहुत खुश होता है, वाह मेरे से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, सारे विश्व को मैं किरणें फैला रहा हूं, बीच में बादल आ जाते, ये बादलों की इतनी मजाल, मुझे बादल बनना है कि ये सूरज के किरणों को भी रोक देते, फिर बादल बनता है, सारी पृथ्वी पर बारिश गिराता है, बहुत खुश होता है, सब हिल रहा है, आहा, पर ये पर्वत, ये पत्थर, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे वजह से, मुझे पत्थर बनना है, फिर पत्थर बन जाता है और बहुत खुश होता है, मैं अब शक्ति शक्तिशाली, वहां एक पत्थर तोड़ने वाला आता है, वो कहता है ये पत्थर तोड़ने वाला मुझे तोड़ेगा, मुझे पत्थर तोड़ने वाला बनता है, बनना है। फरिश्ता कहता है तथास्तु, और फिर पत्थर तोड़ता है और इतना खुशी से पत्थर तोड़ता है, वाह वाह वाह, मेरे ऐसे अधिक सुखी कोई नहीं है संसार में, पहले बहुत दुखी था पत्थर तोड़ते हुए, अब लंबे चक्र में घुसकर अब पता चला कि मैं ही सुखी हूं संसार में, तो नो कंपैरिजन, मैं यूनिक हूं, केवल यूनिक नहीं मास्टरपीस हूं, और भगवान की अप्रतिम कलाकृति हूं, मुझे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से फुर्सत में गढ़ा है, एक एक अंग, एक एक चीज मेरी जो है वो भगवान को पसंद है, तो और मैं जो हूं जैसा हूं उसका हूं, शरीर हो, भाषा हो, आंखें, जो भी, सब कुछ मेरा, जॉब, सब कुछ उसको पसंद है, तो ढोल के दूर के ढोल सुहावने नहीं होते, हमारे अपने ही ढोल बजाते रहना है। ओम शांति।
ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे, उठाते दुख में ही सुख है छिपारे, साथे दुख में ही सुख है छिपारे,
भैया रे
साथी रे,
भैया रे
ओ साथी रे, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने, कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे, ओ साथे दुख में ही सुख है छिपारे, ओ साथे दुख में ही सुख है छिपारे,
भैया रे
साथी रे,
भैया रे
ओ साथी रे, रात अंधेरी
रामा,
रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा, ओ साथी है शीतल अंधियारा, रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा, ओ साथी है शीतल अंधियारा, पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे, ओ
साथे दुख में ही सुख है छिपारे ओ साथे।